सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः सम्यक्दर्शनचरणगुण
का कर्मकांड जो लिखा है उसके आधार से भाव चूलिका की बात यहां चली अधिकार की। जीव के असाधारण भाव तत्वार सूत्र में हमने सूत्र पढ़ा है, औपशमिको उपशायिको मिश्रश्च। तो ये जो जीव के असाधारण भाव, अभी जो नए कोई लोग हैं उनके लिए बताती हूं, ये यहां असाधारण भावों की चर्चा चलेगी। तो जीव के साधारण भाव कौन से हैं? हाँ, यहां तो हम अभी असाधारण भावों की चर्चा, आप ही बता ना। हाँ बोलो। सामान्य गुण, देखो गुण कहो या भाव को एक ही बात है। दोपहर में हमने गुणों की चर्चा की ना, सामान्य गुणों की चर्चा शुरू हो गई है। हमने कहा चलो अभी हम विशेष गुणों की भी बात करेंगे जो विशेष भाव कहने में आते हैं, जीव के असाधारण भाव। देखिए प्रत्येक द्रव्य भाव स्वरूप है, गुण स्वरूप है, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं हम। तो यहां जीव के भावों की बात चलेगी। तो जीव के जो सामान्य भाव है तो ये अन्य द्रव्य में भी पाए जाते हैं, परंतु जो जीव के अपने ऐसे कुछ विशेष भाव है, असाधारण भाव है, उसकी हम यहां चर्चा करेंगे, वो भी कर्मों के आधार से। क्योंकि इन भावों की चर्चा तो हमने द्रव्यान योग में भी बहुत सुनी है, पढ़ी है, तत्वार सूत्र में भी हमने देखी है। तो यहां इसी को हम गुणस्थानों पर घटाएंगे, कौन कौन से कर्मों में ये भाव घटित हो गए, किस कर्म के निमित्त से ये भाव हो गए, उसको भी देखेंगे, कुछ अलग एंगल से इसको हम विचार करेंगे। कुछ कहा? तो यहां हम ये भावों की बात चल रही है। तो ये जो पांच प्रकार के ये असाधारण भाव कहने में आते हैं, एक है औपशमिक भाव, एक है क्षायिक भाव, क्षायोपशमिक भाव, औदयिक भाव और पारिणामिक भाव। इसमें कर्मों की अपेक्षा लगती है किन्हीं किन्हीं भावों में, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। पारिणामिक भाव तो जीव का अनादि अनंत भाव है, उसका वो स्वभाव भाव है, वो तो नित्य भाव है, द्रव्य स्वरूप ध्रुव भाव है। परंतु अन्य जो अभी हमने चार पहले नाम लिए हैं, वो पर्याय स्वरूप भाव है, जीव के पर्याय है वो, औपशमिक, शायिक्षा, औपशमिक, औदयिक आदि जीव के भावों के नाम है। उसी समय हमने सुबह देखा था कि जब जब यहां जीव के भाव है तब सामने कर्मों का भी उसका अपनी अवस्था अपने कारण स्वयं से होती है, तो जब जीव का औपशमिक भाव है तो सामने कर्म की उपशम रूप अवस्था पाई जाती है। वो भी कौन से कर्म की पाई जाएगी उसको हम देखेंगे। सभी कर्मों में तो यह अवस्था नहीं होगी, क्यों? आयु कर्म का उपशम होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। हम देखेंगे कौन से कर्मों में ये भाव घटित होगे, कौन से कर्मों में नहीं होगे, हर एक भाव कौन कौन से कर्म पर लागू होगा ये हम देखने जाने वाले, विस्तार से देखेंगे हम इसको। तो पहले में पहले ये निश्चित हुआ कि जहां कर्म की उपशम रूप अवस्था है वहां जीव की भी अपने स्वयं के कारण अपना स्वयं का जो उसका कुछ भाव है वहां पर्याय की बात है। यहां ये जो पर्याय जीव के अपने कारण है उस अवस्था को कर्म के तरफ से हम नाम देंगे। उपशम शब्द से औपशमिक ये भाव, ये शब्द तैयार हुआ। जैसे शरीर से शारीरिक, हम कहते हैं शारीरिक पीड़ा है, मन के द्वारा जो एक शब्द तैयार होता है हम कहते हैं मानसिक है, तो ये शारीरिक है, मानसिक है। ऐसे ये औपशमिक भाव या औपशमिक नाम कैसा तैयार हुआ, तो कर्म में उपशम नाम की जो अवस्था होती है और जीव में औपशमिक नाम का भाव होता है। ना जीव कर्म का उपशम करता है और ना ही कर्म जीव में औपशमिक भाव को तैयार करता है। जीव अपने स्वयं के कारण औपशमिक भाव रूप से परिणमित होता है और उस समय कर्म में सामने उसके अपने कारण उपशम रूप अवस्था पाई जाती है। ये तो उपशम की बात की। अब जो क्षायिक भाव है ये कौन कौन से है उसकी चर्चा भी हम करेंगे। पहले तो उसके नाम तो सुनेंगे। क्षायिक शब्द कौन से शब्द से तैयार हुआ होगा? क्षय। तो जहां कर्म का क्षय पाया जाता है उस समय जीव का जो भाव है उसको हम क्षायिक भाव कहेंगे। आसान है ना, ये तो भाषा का नियम है। वैसे क्षायोपशमिक, कर्म में विशिष्ट कर्मों का क्षयोपशम पाया जाता है। ये क्षयोपशम होता है ना, क्या होता है उसको भी देखेंगे। अब ये हमारा इसमें भी विषय वही चल रहा है ना, क्षयोपशम वगैरह। आज तो हमने कर्मों के नाम देखे सुबह, अभी उनकी अलग अलग अवस्थाओं के भी बारे में देखेंगे। तो कर्मों में जब वहां विशिष्ट कर्मों का क्षयोपशम है और यहां जीव में उस भाव को क्षयोपशमिक भाव ऐसा कहने में आता है। कर्मों में कर्म का उदय चल रहा है और उसके निमित्त से यहां जो भाव हो रहे हैं जीव के अपने स्वयं के कारण, निमित्त अन्य द्रव्य में कुछ नहीं करता, ख्याल है, परंतु करणानुयोग में सभी कथन निमित्त के द्वारा ही होगी। ये कर्म ने कराया ऐसा भी कहेंगे, परंतु अभी ये हमारी जिम्मेदारी है कि उसमें सही क्या जानना है। तो जीव में जो कर्म के उदय के काल में जीव में कुछ विशिष्ट भाव हो रहे हैं उसको हम कहेंगे औदयिक भाव। अब मेरा एक प्रश्न है, मैं पूछूं वही बोलेगा चेतना में, हाँ, क्योंकि क्या है, हम चाहते हैं कि नए लोग विचार करके उसका सोच ले, विचार करें। झट से कोई उत्तर देता है तो हम विचार करना छोड़ देते हैं क्योंकि उत्तर तो मिल गया है ना। और जो पुराने लोग हैं जिनका अभ्यास है उनको तो उत्तर पता है, परंतु हम चाहते हैं कि नए लोग इसमें जुड़ जाए, विचार करें इस पर। तो मेरा ऐसा प्रश्न है, ये जो पारिणामिक भाव है वो कैसा, यानी कर्म की कौन सी अवस्था होगी तो वहां ये पारिणामिक भाव होगा? अभी मैं अभी जिसको पूछूंगी, अभी पुरुषों में, महिलाओं के तो बहुत सारे हाथ ऊपर आ गए, आप कहेंगे? नहीं नहीं, वो आपके बाजू वाले, आपके गांव वाले। नहीं, आप जरा सोचना, पीछे आप कहेंगे, भाई साहब आप पीछे, कर्म का कौन सी अवस्था होगी वहां कि जिसके कारण जीव के उस पारिणामिक भाव कहने में आता है? हाँ, आप बताइए। बहुत अच्छी बात है। पारिणामिक भाव यह जीव का स्वभाव भाव है, उसमें कर्म की कोई अपेक्षा नहीं, कर्म की किसी अवस्था के कारण ये भाव नहीं होते। जैसे जीव का जीवपना जो है, जीव का जो जीवत्व है, जीव में जो ज्ञान दर्शन आदि जो है वो कौन से कर्म के कारण है? किसी कर्म के कारण है। जीव का जीव बना उसके अपने कारण है। पुद्गल में पुद्गलपना किसके कारण है? उसके अपने कारण है। धर्म द्रव्य में धर्म द्रव्यपना किसके कारण है? उसके अपने कारण है। वो उसका स्वभाव भाव है और स्वभाव किसी के अधीन नहीं होता और ना ही स्वभाव किसी के प्रश्न के उत्तर रूप आता है। ऐसा क्यों? स्वभाव में ऐसा प्रश्न नहीं चलता है ना। एक कर्णन योग में या धवला में बार बार आता है, ऐसा क्यों? तो स्वभाव किसी के प्रश्न का उत्तर देने के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। ये स्वभाव तो ऐसा होता है, तो होता है तो उसको आप स्वीकार करना चाहिए। उसको हम जान तो सकते हैं पर क्यों तो उसका जवाब नहीं होता। कर्णन योग को कहते अहेतुवाद आगम, उसका हेतु यानी कारण नहीं कह सकते। ऐसा क्यों होता है? जीव जब तत्व विचार करने लगता है तो उसके सारे कर्म पहले पुराने पड़े हुए बांधे हुए, उसका अनुभव क्यों कम हो जाता है? उसमें उपशम क्यों हो जाता है? वो अपने आप क्यों चला जाता है? ऐसा ही उसका स्वभाव। और जीव राग द्वेष करता है, आपका प्रश्न था ना, जीव यहां राग द्वेष करता है तो कर्म क्यों बनते हैं? ऐसा ही उसका सहज बने, ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। इसको निमित्त नैमित्तिक कहते हैं। दो भिन्न द्रव्य है और दो भिन्न द्रव्यों की वो पर्याय उस समय होनी है। पुद्गल द्रव्य भी अनादि से है, जीव द्रव्य भी अनादि से है। हम यहां विशिष्ट रूप भाव रूप परिणमित हो रहे तो ये कर्म नाम के जो पुद्गल परमाणु है वो अनादि से अलग अलग अवस्था करते करते अभी हमारे कर्म रूप पड़े हैं, तो उसमें भी वैसी अवस्था उनके सहज अपने परिणमन स्वभाव से स्वयं होती है। फिर भी दोनों का ऐसा सुमेल देखते हैं तो हम कहेंगे यहां जीव के ये उपशमी भाव हुए और यहां कर्म में उपशम हुआ। तो हम तो ऐसे पराधीन हो गए हैं कर्म का अभ्यास करके, क्या करें? अभी हमारा दर्शन मोह का उदय है इसलिए हमको सम्यक तो नहीं होता, ये हम पराधीनता मानते हैं। जब हम यहां सम्यक रूप परिणमित होते हैं उसी समय दर्शन मोह अपने आप वहां उपशमित रूप अवस्था उसकी पाई जाती है। ये सहज होता है, हमें कर्म में कुछ नहीं करना है, कर सकते ही नहीं, ये पहले स्वीकार करना है। कर्म ये परद्रव्य है और ये अभी सभी पुस्तकों में सभी ग्रंथों में यही विषय चल रहा है। प्रवचन सार में ले लो, समय सार में ले लो, अभी कर्मकांड में भी यही बात कही कि प्रत्येक द्रव्य की अपनी अवस्था स्वाधीन है, ये परद्रव्य में इसका कुछ नहीं चलता, ये कर ही नहीं सकता। ये भ्रांति है हमारी कि हम परद्रव्य का कुछ करें या उसको बदले, ख्याल है ना। तो अभी हम ये भावों की बात यहां चलाएंगे। ये जो पारिणामिक भाव है वो किसी के अधीन भाव नहीं है, ये उसका स्वभाव भाव है। तो मुझे ऐसा मेरा प्रश्न है कि कौन सा ऐसा जीव होगा कि जिसमें पारिणामिक भाव नहीं होगा? नए लोग विचार करें, मेरा तो ये ऐसा है, ऐसा कोई जीव होगा ना, अरिहंत है, सिद्ध है या 14 गुण स्थान में से कोई ऐसा जीव है कि जिसके पास पारिणामिक भाव नहीं है, ऐसा कोई जीव होगा कि नहीं होगा? यानी जीव तो है परंतु उसमें उसका जीवपना नहीं है, ऐसा होगा कोई? ऐसा होगा ही नहीं। तो जीव है तो उसमें जीवत्व तो है ही है, यानी उसका पारिणामिक भाव जो ये है वो कैसा है? अनादि अनंत उसमें पड़ा है, जीव का स्वभाव है, वो तो जीव को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। और हमने देखा है उसमें कर्म का कोई निमित्त बनता ही नहीं है, यानी कुछ कर्म की अवस्था पलट जावे और हमारा पारिणामिक भाव बदल जावे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये जीव का स्वभाव भाव जो है वो तो अनादि अनंत उसके पास है। एक काल की अपेक्षा भी अगर हम इन भावों को देखते हैं तो जो अनादि से अनंत काल तक है उसको हम कहेंगे अनादि अनंत भाव। अब जो काल की अपेक्षा अभी जो औदयिक भाव है, औदयिक मैंने कर्म का उदय है तब वो भाव शुरू हो जाता है, कर्म का उदय मिटा तो वो भाव नहीं रहता। जैसे हमारे राग द्वेष के परिणाम कैसे है, वहां कर्म का उदय हो रहा है और यहां जीव राग द्वेष रूप परिणमित हो रहा है, वो कितने काल तक टिकते हैं? आते हैं चले जाते हैं। उसको फिर भी प्रवाह अपेक्षा कब से है? अनादि से। तो अभी हम ऐसा देखेंगे, अभी हमने देखा ना पारिणामिक भाव के बिना कोई जीव नहीं है, यानी सभी जीवों के संसारी जीव या मुक्त जीव है सभी को पारिणामिक भाव तो होगा ही होगा, बराबर। अब औदयिक भाव के बिना कोई संसारी जीव नहीं है। जीवों के दो भेद हैं, संसारी और मुक्त। संसारी कब तक कहना? 14वें गुणस्थान तक। अरिहंत भगवान भी संसारी है क्योंकि उनके अभी कर्मों का सद्भाव है ना, वो संसारी कहेंगे हम, तो उनके भी औदयिक भाव पाया जाता है। अभी हमने यहाँ औदयिक भाव की लिस्ट नहीं लिखी है, जब बोर्ड आएगा तब सभी भावों के यहाँ नाम लिखेंगे हम, ख्याल है। तो ये औदयिक भाव के बिना कोई संसारी जीव नहीं होगा, यानी सभी जीवों का औदयिक भाव है। औदयिक भाव कब खत्म हो गए? 14वां गुणस्थान पार करके जीव सिद्ध बनेगा तब ये औदयिक भाव नहीं रहेंगे। यानी सिद्धों में अभी पारिणामिक भाव तो है, यह सिद्ध हुआ, औदयिक भाव नहीं है। हम उल्टा जा रहे हैं यहां से, ये पारिणामिक भाव तो सभी जीवों में है, बराबर। औदयिक भाव सभी संसारी जीवों में है। क्षाओक्षमिक भाव वो भी अनादि से है, ये हमारे ज्ञान जो चल रहा है ना, ये क्षाओक्षमिक ज्ञान कहलाता है। वो क्षाओक्षम शब्द कैसे तैयार हुआ उसकी चर्चा करेंगे हम। तो ये क्षाओक्षमिक ज्ञान तो सबके पास है, वो भले मिथ्या हो, सम्यक हो, जो कुछ है वो तो क्षाओक्षमिक भाव है। ज्ञान दर ये जो दान लाभ भोग उपभोग वीर आदि जो होते हैं वे भी सभी क्षाओक्षमिक भाव है, वो तो अनादि से है। कब तक रहेंगे? हाँ, 12वें गुणस्थान तक रहेंगे, क्योंकि उसके बाद वो क्षायिक हो जाएंगे 13वें गुणस्थान। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी छद्मस्थ जीव, छद्मस्थ का अर्थ मालूम है आपको? हाँ, क्या? छद्म यानी आवरण, आवरण सहित। कौन सा आवरण है? ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है। तो 12वें गुणस्थान तक, यानी जब तक जीव अल्पज्ञ है, सर्वज्ञ नहीं हुआ है, तब तक उसको हम कहेंगे छद्मस्थ। जिनका गुणस्थान का अभ्यास हुआ है तो 12वें गुणस्थान तक हम उसको छद्मस्थ कहेंगे और बाद में उनको सर्वज्ञ कहेंगे। जब केवल ज्ञान होता है, आवरण पूर्ण नष्ट होता है, वो निरावरण हो जाते हैं, निर्दोष और निरावरण होते हैं। सर्वज्ञ भगवान सबसे पहले निर्दोष होते हैं। निर्दोष होते हैं ना, पूर्ण वितरागी होते हैं। कब होते हैं? 12वें गुणस्थान में पूर्ण निर्दोष हो गए और बाद में वो निरावरण हो जाते हैं, यानी सर्वज्ञ होते हैं। यानी पहले वितरागी होते हैं और बाद में सर्वज्ञ होते हैं। तो ये जो क्षाओक्षमिक भाव है वो किसमें होगा? 26 छद्मस्थों में होगा, यानी इसके बिना कोई छद्मस्थ जीव नहीं पाया जाएगा। अब यहां क्षायिक भाव, तो क्षायिक भाव यानी विशिष्ट कर्मों के क्षय से होता है उसको क्षायिक। वो भी सुबह हमने घाती अघाती कर्मों की लिस्ट देखी थी, उसमें भी कौन कौन से कर्मों पर ये क्षायिक भाव आदि घटित करना है उसको भी हम देखने जा रहे हैं। हमने सुबह घाती अघाती कर्मों की यहां चर्चा की थी, अभी सुबह थोड़े ही लोग थे यहां पर। तो ये क्षायिक भाव कौन कौन से कर्मों पर घटित होगा, आप में से कोई कहेंगे? पीछे वाले कोई क्षायिक भाव कौन कौन से? हाँ, आप बताना। अच्छा, मोहनी एक बता दिया इन्होंने, मोहनीय कर्म के क्षय होने पर क्षायिक भाव प्रकट होगा। कौन सा क्षायिक भाव प्रकट होगा? मोहनीय भी हमने दो प्रकार के देखे थे, एक दर्शन मोहनीय और एक चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय का क्षय होने पर कौन सा क्षायिक भाव होगा? हाँ, क्षायिक सम्यक तो होगा, बराबर। और क्या होगा? मोहनी में तो दो है, क्षायिक चारित्र मोहनी का क्षय हो जाता है। क्षय होना यानी सत्ता में से संपूर्ण नष्ट होना, उसको कहते हैं क्षय होना। ये क्षय वाली बीमारी वो उसके काम नहीं है। ये तो यहां क्षय यानी क्या है? सत्ता में से उस कर्म का पूर्ण अभाव हो जाना, तो उसको क्षय कहेंगे। तो एक तो हुआ क्षायिक सम्यक्व और एक हुआ क्षायिक चरित्र, दो भाव हुए क्षायिक के। क्षायिक के नौ भाव है। हाँ, आपका ऐसा कहना है केवल ज्ञानावरण के क्षय से केवल ज्ञान होता है, क्या ये सही है? निमित्त का ही कथन हम कहने जा रहे हैं, पर क्या अकेले केवल ज्ञानावरण के क्षय से केवल ज्ञान हुआ और मति ज्ञानावरण शुद्ध ज्ञानावरण बाकी रहेगा, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, ख्याल है ना। पांचों ही ज्ञानावरण का क्षय हो जाता है, एक साथ होता है। तो पांचों ही ज्ञानावरण का क्षय हो जाता है और केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं कि मति ज्ञान आवरण का क्षय हो गया, मति ज्ञान उत्पन्न हुआ, ऐसा नहीं है अभी। यानी वहां पांचों ही ज्ञान हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। देखो देखो, उसके लिए धवला में एक बात आती है, कोई ऐसा माने कि मति ज्ञानावरण का भी क्षय हुआ है तो मति ज्ञान भी है, और केवल ज्ञानावरण का क्षय हुआ है तो केवल ज्ञान भी है, ऐसा मानने में क्या विरोध है? तो उसके लिए ऐसा कहा है, आत्मा के जो असंख्यात प्रदेश है तो उन प्रदेशों में स्पष्ट ज्ञान भी है, जो अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष स्पष्ट ज्ञान, सभी द्रव्यों के पर्याय को जानने वाला भी ज्ञान है, और उसी आत्म प्रदेशों में अस्पष्ट ज्ञान भी है, ऐसा मानेंगे? हमारे जिस आंख से बिल्कुल अच्छा दिखता है और उसी आंख से हमको धुंधला भी दिखता है, ऐसा कहेंगे तो नहीं हो सकता है ना। तो केवल ज्ञान और ये जो मति श्रुत आदि जो अन्य चार ज्ञान एक साथ होता है ऐसा मानेंगे तो विरोध आएगा। फिर भी पांचों ही ज्ञानावरण का जब तक क्षय नहीं होगा तो केवल ज्ञान नहीं होगा, ख्याल आता है? हम उसको वो देशावधि सर्वावधि की बात करके समझाएंगे बाद में एक किस तरह से घटित होता है। तो ये हमने यहां शायिक भाव कौन कौन से देखे, एक तो देखा शायिक सम्यक, शायिक चारित्र, आपने कहा शायिक ज्ञान यानी जिसको कहते हैं केवल ज्ञान, और कोई भाव है बेटा पीछे? हाँ शायिक दर्शन, हाँ और दान लाभ भोग उपभोग और वीर। अभी मेरा ऐसा सवाल है, सुबह हमने कर्म के आठ नाम देखे थे, चार घाती और चार आघाती। घाती कर्मों के नाम याद है ना, ज्ञानावरण दर्शनावरण मोनीय अंतराय, और आघाती में आयु नाम गोत्र वेदनी, वेदनी आयु नाम गोत्र। अब आपने जो क्षायिक भाव बताए हैं वो कौन से कर्मों के क्षय पर घटाए हैं आपने? हाँ बोलो, चार घाती कर्मों पर ही बताए, उस पर ही आपने किसी आघाती का नाम लिया है क्षायिक भाव में? नहीं लिया ना, आयु कर्म के क्षय से कोई क्षायिक भाव नहीं हमने यहां गिना है, हमने क्षायिक भाव में ही गिना है। आप ही ने बताया ना क्षायिक सम्यक तो क्षायिक चारित्र, पर उसमें किसी आघाती का नाम तो नहीं लिया था। यानी क्षायिक भाव कौन से कर्मों पर घटाए सारे? हाँ घाती कर्मों पर ही घटाए है ना। अभी हम बाद में औक्षमिक भाव पर भी घटा के दिखाएंगे कौन से कर्म पर घटते, अभी औक्षमिक की चर्चा रहेगी उसको भी देखेंगे। औक्षमिक भाव जो है वो कौन से कर्मों का उपशम होगा इसको भी हम निश्चित करेंगे। आघाती में किसी का उपशम होगा और हमारा उपशम भाव प्रकट होगा, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। वेदिनी कर्म का उपशम होगा कुछ काल के लिए? नहीं होगा। और फिर आयु का? नहीं होगा। नाम कर्म का, गोत्र कर्म का? नहीं हो सकता। अच्छा अब इसमें हम ज्ञानावरण का उपशम हो जाए तो क्या हो जाएगा? केवल बन जाए, क्योंकि सभी ज्ञानावरण का उपशम हो जाए, उपशम यानी उदय नहीं होगा, दबे रहेंगे। जैसे हम मोहनीय में देखते हैं ना ग्यारहवें गुणस्थान में क्या होता है कि मोह सर्वथा पूर्ण रूप से उपशमित हो जाता है, जीव पूर्ण वितराग होता है। कैसा वितराग? अरिहंत भगवान जैसे पूर्ण वितराग हो जाते हैं। कितने काल के लिए? एक अंतर्मुहूर्त के लिए। ऐसे मान लेते हैं कि ज्ञानावरण भी मान लेते उपशमित हो जाए तो क्या होगा? एक अंतर्मुहूर्त के लिए केवल ज्ञान हो जाएगा, और उस अंतर्मुहूर्त में सब कुछ जान लेंगे हम, कौन हमारा मित्र है कौन शत्रु है, तो वितरागी रहेगा वो। तो ये ज्ञानावरण में कभी उपशमित होता नहीं, जिस उपशम की हम चर्चा कर रहे हैं उपशमिक भाव वाली, वैसा उपशम उसमें नहीं होता। एक बात, दर्शनावरण में भी नहीं होता है, और ऐसा उपशम वो दान लाभ भोग उपभोग वीर्य में भी नहीं होता। अब एकमात्र बचा मोहनीय, मोहनीय कर्म को जो औपशमिक भाव का उपशम जो है ना, ये अन्य जो सदवस्था रूप उपशम उसकी चर्चा नहीं, उसमें तो क्षोपशम भाव में घटित होते हैं, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। यहां जिसमें औपशमिक भाव होता है ऐसा उपशम कौन सा कर्म अभी रह गया? मोहनीय। तो मोहनीय में दो है, एक है दर्शन मोहनीय और एक चारित्र मोहनीय। तो दर्शन मोहनीय ने मिथ्यात्व अभी हम समझेंगे, तो मिथ्यात्व का उपशम हो जावे, हो सकता है ना अंतर्मुहूर्त तक मिथ्यात्व का उदय मिट जावे, तो यहां मिथ्यात्व का कर्म भी नहीं है उदय रूप, और यहाँ जीव का मिथ्यात्व रूप परिणाम भी नहीं है। यानी कैसा परिणाम है उसका? सम्यक्त्व रूप परिणाम है। जब सबसे पहले में पहले सम्यक दर्शन होता है किसी जीव को, मिथ्यात्व में से विशिष्ट कर्मों का उपशम करके सम्यक्त्व होता है उसको, तो उसको ये औपशमिक सम्यक्त्व होता है। यानी वो दर्शन होने का और अनंतानुबंधी का वहां उपशम पाया जाता है। अब और कहां उपशम भाव घटित होता है? औपशमिक दो होते हैं, औपशमिक भाव दो है, चारित्र मोनी। तो चारित्र मोनी का भी उपशम होता है जब जीव उपशम श्रेणी, उपशम श्रेणी का अर्थ ऐसा है, देखो जिसका गुणस्थान का अभ्यास नहीं है, पहला गुणस्थान तो मिथ्यात्व वाला है। जीव जब सबसे पहले सम्यक तो प्राप्त करता है तो पहले में से वो चौथे में या पांचवे में सातवें में जाता है। चौथा गुणस्थान तो असंय सम्यक दृष्टि कहलाता है। पांचवा गुणस्थान व्रति श्रावक है। सातवां मुनियों का है, तो सातवें में जाकर वो छठे सातवें में झूलते रहते हैं, मुनि झूलते हैं ना उनका, ऐसी अवस्था सतत बनी रहती है। जब जीव वो चारित्र मोहनीय कर्म का उपशम करते हुए आठवा नौवा दसवा ग्यारहवा गुणस्थान प्राप्त करता है, उसको कहते हैं उपशम श्रेणी चढ़ाव। तो वो नियम से उपशम करते करते ग्यारहवें तक जाता है और क्रम से ग्यारहवा दसवा नौवा आठवा सातवा ऐसे क्रम से नीचे आता है। कोई ग्यारहवें में से जंप मारकर पहले में नहीं जाता, बहुत से लोग ऐसा समझते हैं। दूसरे ऐसे जिसको क्षपक श्रेणी कहते हैं, सातवें गुणस्थान के बाद जो क्षायिक सम्यक दृष्टि है, जिसने क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया हुआ है, ऐसा जीव कोई जीव उसी भाव में मोक्ष जाने वाला, वो तो आठवां नौवां दसवां और बारहवां गुणस्थान प्रकट करता है, इसको कहते हैं क्षपक श्रेणी। बारहवें गुणस्थान के बाद उसको अरिहंत अवस्था प्राप्त होती है, जिसको हम तेरहवां गुणस्थान कहते हैं। तेरहवें के बाद चौदहवां गुणस्थान भी अरिहंतों का ही है और बाद में उसको मोक्ष अवस्था प्राप्त होती है। तो अभी ये जो हम औपशमिक भाव देख रहे थे वो कहां पर पाया जाता है? उपशम श्रेणी चढ़ते हुए पूर्ण औपशमिक चारित्र कहां है? ग्यारहवें गुणस्थान, और उसका प्रारंभ आठवें से हम कहते हैं। ख्याल में आता? अब इसकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी इसके भाव भी हमको देखने हैं। तो औपशमिक भाव अनादि से तो किसी के पास नहीं था, जब उसने सम्यक तो औपशमिक सम्यक तो प्राप्त किया तो उसके ये भाव प्रकट हुआ। वो कितने काल तक रहेगा? एक अंतर्मूर्त, उससे ज्यादा उसका भाव वो नहीं टिकता। उसके बाद उपशम में से वो क्षोपशम सम्यक दृष्टि हो सकता है, परंतु उसका उपशम रूप अवस्था नहीं रहती। उपशम का काल एक अंतर्मूर्त है। देखो आपका प्रश्न है ये कौन सा अंतर्मूर्त है। देखिए अंतर्मूर्त के बहुत असंख्यात भेद है। अब यहां यथा योग्य अंतर्मूर्त इतना समझना, आप उसको नाम देने की कोशिश मत करना। हाँ हाँ, आचार्य ने नहीं दिया है नाम, तो हम कौन होते हैं उसको नाम देने वाले? ख्याल है ना? 48 मिनट नहीं समझना बेन। देखो देखो ये हमारी गलत फहमी है कि 48 मिनट में जो अंतर्मूर्त अंतर में रहता है, शुद्धोपयोग में रहता है, उसको सम्यक तो होता है, उसको केवल ज्ञान होता है, बहुत गलत मान्यता है। उल्टा तो ऐसा ही नीचे नीचे के गुणस्थानों में जो रहने का काल है ना शुद्ध, वो बड़ा है और ऊपर के गुणस्थानों का काल बहुत छोटा है। अकेले छठे गुणस्थान का जितना काल है उसके काल से भी छोटा काल सातवां आठवां नौवां दसवां ग्यारहवां दसवां नौवां आठवां सातवां का है सबका मिलकर, और इतने सेकंड का भी कुछ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड इतना ही काल है ये सब, फिर भी वो अंतर्मूर्त है। ऊपर ऊपर के गुणस्थानों का काल छोटा है, परंतु भावों की गंभीरता, भावों की डेप्थ जो है वो बहुत गहराई है, वो बहुत ज्यादा है। शुद्धि विशुद्धि उंडान वीतरागता कहो उसकी, ख्याल है ना? कम काल में उनकी निर्जरा भी असंख्यात गुणी है, गुणश्रेणी निर्जरा वो भी बहुत असंख्यात गुणी है। अभी उसके यहां अपना प्रकरण नहीं चल रहा, उसकी लंबाई वगैरह उसकी में बहुत बातें हैं, उसकी डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, अभी हमारा विषय चलाएंगे। नहीं तो वो क्या है, हाँ आपका कुछ प्रश्न, आपका ऐसा प्रश्न है ऊपर के गुणस्थानों में क्यों समय कम है? क्योंकि ऐसा होता है ना, उनकी विशुद्धि या वितरकता बहुत फास्ट, बहुत जल्दी 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 बढ़ती चली जाती है। जैसे हम देखते हैं ना थर्मामीटर का पारा एकदम फास्ट चले ऊपर, वैसे वितरकता इतनी अनंत गुणा प्रति समय अनंत गुणा बढ़ती है, और उतने छोटे से काल में उनकी वो भावों की इतनी विशुद्धि बढ़ती है कि ग्यारहवें गुण स्थान तक जाते हैं। शबक शनि की भी बात ऐसी है, शबक शनि का भी काल ऐसा ही बहुत कम काल है, छठे गुणस्थान से भी ऊपर ऊपर के गुणस्थानों का काल बहुत कम, तेरहवें गुणस्थान का काल हर एक का अलग अलग है, ख्याल है? देखो देखो, शुद्धोपयोग अवस्था है ना अंतरंग में स्थिरता, ये शुद्धोपयोग भी हम द्रव्यानुयोग में शुद्धोपयोग शुद्धोपयोग कहते हैं, करणानुयोग तो तीन करण वाली बात करता है हमेशा, जैसे उसके अधक करण है, अपूर्व करण है, निवृत्तिकरण परिणाम है, उन परिणामों के द्वारा उसके ऐसे ये हो जाता है। करणानुयोग के अपेक्षा अगर शुद्धोपयोग शुद्ध उपयोग जहां पूर्ण रीति से शुद्ध है, ऐसा शुद्ध उपयोग तो बारहवें भी हो जाता है। नहीं, वो योग की बात नहीं ली मैंने अभी, यहाँ योग को कौन करेंगे अभी हम यहाँ, ख्याल है ना? तो ऐसे अलग अलग अपेक्षाओं से हम क्या फिर झगड़ा करते हैं, अरे चौथे में शुद्ध उपयोग हम कहते हैं और आप सामने वाले ऐसा कहते हो कि बारहवें में होता है, सातवें में होता है, जो कुछ है। अलग अलग जगह अलग अलग अपेक्षाओं से बात आती है और वो बात हमें आगम के आधार से स्वीकार होनी चाहिए। ये सारी बातें मोक्ष मार्ग प्रकाशक आठवें अधिकार में लिखी हुई है और उसी के आधार से इसमें भी चर्चा की है, ये शुद्धोपयोग कहाँ किसको कहना है, ख्याल है ना? तो यहां हम औषमिक भाव की बात कर रहे थे, ये औषमिक चारित्र जो है और औषमिक सम्यक्त्व है उसका काल एक अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं है, और वो 48 मिनट वाला अंतर्मुहूर्त कहीं नहीं होता है। क्योंकि हमें ऐसे लोग मिलते हैं, क्या है कि हम 4 साल से सम्यक दर्शन का प्रयत्न कर रहे हैं और हमें समय दर्शन नहीं होता, इसलिए अभी आपके पास आए। पहले दूसरे किसी के पीछे लगा था, वो कोई, अभी मैं गांव का नाम नहीं लेती, वहां का कोई एक्स है, उसने अनेक मुनियों को समय दर्शन दिलाया, ऐसा वो कहता है। वो गृहस्थ क्या कहता है, उसने अनेक मुनियों को समय दर्शन दिया है इसलिए हम भी उसके पीछे गए। तो आपने क्या किया, तो हम रोज एक अंतर्मुहूर्त तक यानी 48 मिनट तक ओम नमः सिद्धेभ्यः कहते हैं, ऐसे बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट बैठ के, अच्छा ध्यान मुद्रा लेके। मैंने बोला आपको सिद्धों का स्वरूप तो पता होगा, उसकी क्या जरूरत है? यानी ना सिद्धों का स्वरूप पता है और ना सिद्ध स्वरूप अपना पता है, तो भेद विज्ञान की भी बात मालूम नहीं, कुछ नहीं मालूम, और लोग ऐसे ही भोले होते हैं तो किसी के पीछे लगते हैं और लगता है कि हम धर्म कर रहे हैं, ख्याल है? तो ये 48 मिनट कभी नहीं लगते हैं। ये जो तत्व निर्णय हम तत्व विचार करते हैं, भले उसमें कुछ कम ज्यादा समय लगे, अपनी बात चलती है तत्वों का विचार होने में, परंतु जब तत्व निर्णय सही हो जाएगा तब उसके बाद इतना बड़ा अंतर्मुहूर्त नहीं रहता। ये सारा करण लब्धि का काल भी बहुत छोटा है, सब मिलकर भी अंतर्मुहूर्त है, पांचों लब्धि और आगे का उपशम सम्यक्त्व, ये सब मिलकर काल भी अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं है, और हर एक लब्धि का भी अलग अलग काल अंतर्मुहूर्त है। नहीं, इतना बड़ा अंतर्मुहूर्त नहीं होता, फिर भी वो कितने काल में होता है, अंतर्मुहूर्त में होता है, इसलिए उसको अंतर्मुहूर्त कहने में आता है। अंतर्मुहूर्त के बहुत भेद है, एक आवली प्लस एक समय ये मिनिमम अंतर्मुहूर्त है, और मैक्सिमम बड़ा अंतर्मुहूर्त है 48 मिनट में एक समय कम। अभी जहां जो यथा योग्य अंतर्मुहूर्त होता है वहां उतना संभव है, जैसे नौवे गुणस्थान भी एक अंतर्मुहूर्त वाला है, वो भी छोटा अंतर्मुहूर्त है, और नौवे गुणस्थान का स्वरूप समझेंगे, अभी मैंने वो पुस्तक नहीं लाई नवदी सार की, 150 पेजेस तो नौवे गुणस्थान का वर्णन है, और उसमें लाखों करोड़ों अंतर्मुहूर्तों का वर्णन चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो ये अंतर्मुहूर्त के भी कितने भेद है, रोग भी कितना सूक्ष्म जो अपने भी ख्याल में नहीं है, अभी हमारे ख्याल में है ऐसे अंतर्मुहूर्त आपको बता दो, क्या आपको वो इतना एहसास होता है? ऐसा नियम हमने सुबह देखा ना कि कल बात आई थी कि इंद्रिय ज्ञान जो है इंद्रियों के द्वारा हम जो जानते हैं, तो लगातार हम किसी वस्तु को अंतर्मूर्त तक जानेंगे उस इंद्रियों के द्वारा, तब वो अपने क्षोभम ज्ञान का विषय बन सकते। एक समय के लिए जाना तो वो ज्ञान नहीं पकड़ता उसे। ख्याल इतनी देर बाद सबको मालूम है क्षोभम ज्ञानी एक समय वाली बात को वो ऐसा उसके बुद्धि में या ख्याल में आवे ऐसी नहीं बात होती। तो हम प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा जो जानना चल रहा है वो मिनिमम अंतर्मूर्त तक जानते, फिर उपयोग पलटेगा दूसरे इंद्रियों के पास चला जाएगा। बराबर? क्या हमें ऐसा भासित होता है, क्या ऐसा लगता है हम पांचों इंद्रियों के द्वारा एक साथ जान रहे हैं? लगता है ना? आप नहीं, हम भोगते हैं ना पांचों इंद्रियों को एक साथ। आप नहीं भोगते? हमारे मुंबई में तो सारे लोग भोगते। क्या करते हैं? टीवी के सामने बैठते, तो वहां तो नेत्र इंद्रिय का विषय भी चल रहा है, कर्ण इंद्रियों का विषय भी चल रहा है, एक साथ भोजन भी कर रहे हैं तो रसना इंद्रिय का विषय भी चल रहा है, पंखा भी है, एसी भी, जो कुछ है, तो स्पर्शन इंद्रिय का भी विषय चल रहा है, अब वहां कुछ सूंघते भी है ना, तो उसका भी विषय। तो हमें ऐसा लगता है हम पांचों इंद्रियों को एक साथ जान रहे उनके विषयों, पर ऐसा नहीं होता। उसमें एक एक अंतर्मूर्त का ही ऐसा और फास्ट होता है, हमें ऐसा लगता है हम एक साथ जान रहे। जैसे आप जो फिल्में देखते हैं उसकी एक एक फिल्म अलग अलग है ना, फ्रेम कहते हैं उसको, फिर वो इतने फास्ट घुमाते हैं हमें ऐसा लगता है वो एक्शन कर रहे हैं। जैसे आप जलती हुई अगरबत्ती ले लो और घुमाओ जोर से, पूरा सर्कल दिखाई देगा। क्यों? तो उसके वो जो संस्कार रहते हैं तो वो हमें ऐसा भासित हो जाते हैं कि पूरा सर्कल हम देख रहे हैं। वैसे ही इंद्रियों में इतना उपयोग फास्ट फास्ट अपना परिवर्तन होता है, हमें ऐसा लगता है हम एक साथ सबको एक साथ जान रहे, हम देख भी रहे, सुन भी रहे, सुंघ भी रहे, स्पर्श के वो भी जान रहे है ना। तो ये अंतर्मुख कितना छोटा है हमारा, हमें ऐसा एहसास नहीं होता है कि अभी चलो अभी हमने देखना छोड़ दिया, अभी हम सुनने लगे, ऐसा नहीं, तो भाषित नहीं होता है। हाँ, तो इतना फास्ट है, यानी वो अंतर्मुख कितना छोटा है। ये छठे सातवें गुण स्थान में कि वो मुनि की भूमिका भी ऐसे इतना फास्ट उनका चलता रहता है। उपशम संयुक्त का काल एक अंतर्मुहूर्त में, उसमें हजारों बार छठा सातवां चलता है, तो छठे सातवें गुण स्थान का काल भी कितना कम छोटा अंतर्मुहूर्त है, ये बात बताना चाहती हूँ। ख्याल आता है ना? यानी वो उनकी ऐसी सहज अवस्था है, हमें लगता है अरे अंतरंग में स्थिर है, अभी बाहर आए, अभी वो आहार के लिए निकले, ये तब भी उनका ये उपयोग का अंदर बाहर चलता रहता है। ये अंतर्मूर्त की बात है। आहार के समय भी 2400 घंटे उनका वो चलता रहता है, छठा सातवां गुणस्थान। अभी हमने एक काल देखे थे, औपशमिक का काल लिमिटेड है, अंतर्मूर्त तक है, औपशमिक समय तक, तो हम उसको कहते हैं आदि भी है अंत भी है, स आदि स अंत, इसको कहेंगे सादी शांत। अनादि से तो है ही नहीं हमारे पास औपशमिक भाव, है ना? और जब किसी को औपशमिक सम्यक या औपशमिक चारित्र रहेगा तो बहुत काल तक लंबा चलेगा, ऐसे भी बात नहीं, अंतर्मूर्त टिकेगा। समय में नहीं पाए अभी हम भाव खाली देखते हैं। क्षायिक भाव भी नया प्रकट होता है, किसी के अनादि से तो कोई क्षायिक भाव नहीं है, नया प्रकट होता है और प्रकट होने के बाद चला जाता है। एक बार कर्मों का क्षय होने पर फिर आते होंगे कर्म, क्यों नहीं आते? पक्का बुलाने पर भी नहीं आई आपको? पक्का खातिर नहीं है? पक्का? हाँ, गए से गए, वो नहीं आएंगे। तो एक क्षायिक भाव कैसा कहेंगे? स आदि, आदि सहित है, परंतु क्षायिक भाव प्रकट होने पर अनंत काल तक रहेगा। जैसे क्षायिक समय तो प्रकट हुआ, अनंत काल तक रहेगा ना वो, अभी वो मिटने वाला नहीं। क्षायोपशमिक भाव है, अनादि से प्रत्येक जीव को, मिथ्या दृष्टि को भी, वो सारे उसके तीन अज्ञान जो है, पांच लब्धि ने, कौन सी लब्धि? दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, इसको लब्धि भी कहते। ये लब्धि अलग अलग अर्थों में बहुत शब्द आते हैं, तो वहां भी उसका क्षायोपशमिक भाव है। अन्य भी है उसके, उसकी चर्चा हम करेंगे कल। तो ये भी अनादि से है और कब खत्म होंगे? हाँ, बारहवें गुणस्थान के अंत में, यानी वो शांत, यानी स अंत है तो अनादि से, परंतु अभी मिटेंगे बारहवें गुणस्थान के बाद, तो उसको कहेंगे अनादि शांत। औदयिक है वो अनादि से चले आ रहे, परंतु जब जीव सिद्ध हो जाएगा तो ये औदयिक भाव मिट जाएंगे, रहेंगे नहीं, तो अनादि शांत कहेंगे। जो जो कभी सम्यक तो भी प्राप्त नहीं करेगा उसके लिए तो अनादि अनंत रहेंगे। अभव्य की भी बात वो कल उठाएंगे, अभी हमारा समय होने वाला है। और ये जो पारिणामिक भाव है वो अनादि अनंत भाव है, वो किसी कर्म के कारण नहीं है, वो जीव में अनादि से ही पाया जाता है। अब ये भाव कौन कौन से है, कौन से कर्म पर कैसे घटित होते हैं, उसकी चर्चा हम कल करेंगे।